हरे कृष्ण। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे राम 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 हरे हरे जय राधा गोकुल नंद राधा गोकुल नंद राधे जय जय गौरानिताय जय गौरानिताय गौरानिताय जय गौरानिताय जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ बलदेवा जय सुभद्रा जय जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद नितय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नितय गौर हरि बोल गौर प्रेमानंदे जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत हिज डिवाइन ग्रेस अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री श्री राधा गोकुलानंद की जय। श्री श्री गौरनिताय की जय। श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रामयी की जय। निताय गौर प्रेमानंदे समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। समवेत भक्त वृंद की जय। श्री श्री गुरु गौरांग की जय। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदेहं श्रीगुरो श्रीयुत पदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारिणं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धोभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। आराध्यो भगवान् व्रजेशतनयस्तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू वर्गेणया कल्पिता। श्रीमद्भागवतं प्रमाणममलं प्रेमापुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभोर्मतमिदं तत्राधरः न परः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। महाराज निमि और नवयोगेंद्र, इनके बीच में संवाद चल रहा है कई हफ्तों। रविवार हम ये चर्चा कर रहे हैं कि महाराज ने नवयोगेंद्र से कौन से प्रश्न किए और नवयोगेंद्रों ने क्या उत्तर दिए उन प्रश्नों का। पहला प्रश्न था भागवत धर्म क्या है, या सबसे श्रेष्ठ जो लाभ है या हित है मनुष्य समाज के लिए वो क्या है। दूसरा प्रश्न था कि जो भागवत होते हैं, जो भक्त होते हैं, जो भागवत धर्म का पालन करते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, उनका स्वभाव कैसे होता है, उनकी वृत्तियां कैसी होती हैं, उनका स्वधर्म कैसे होता है, कौन से कार्यों को वो करते हैं, कौन से कार्यों को नहीं करते हैं। ऐसे भागवतों के बारे में महाराज निमि का दूसरा प्रश्न था। और पहले प्रश्न का उत्तर कवि ने दिया था और दूसरे प्रश्न का उत्तर श्री हवि दे रहे हैं। और इसका उत्तर देते हुए वो कहते हैं कि तीन प्रकार के भागवत होते हैं, उत्तम भागवत, मध्यम भागवत और कनिष्ठ भागवत। उत्तम भागवत सर्वश्रेष्ठ भागवत होते हैं, जो सब जगह भगवान को देखते हैं या भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान की सृष्टि का दर्शन करके उनको भगवान का स्मरण होता है। दूसरे श्रेणी पर है मध्यम भागवत, जो भेद करते हैं, भगवान के प्रति उनके हृदय में प्रेम होता है, भक्तों के प्रति मैत्री की भावना होती है, जो अज्ञानी लोग मासूम होते हैं उनके प्रति करुणा की भावना रखते हैं, और जो अज्ञानी लोग द्वेषी होते हैं, ईर्ष्यालु होते हैं, उनके प्रति उपेक्षा, अर्थात उनका संग नहीं करते हैं। तो ऐसे मध्यम भागवत होते हैं जो उत्तम भागवत के पदचिन्हों में स्थित होकर उनसे प्रेरणा, मार्गदर्शन आदि प्राप्त करके आगे बढ़ते हैं भक्ति पथ में, और अंततः आज नहीं तो कल वो भी उत्तम भागवत बन सकते हैं। इन तीन श्रेणियों का उल्लेख करने के बाद अब इस दूसरे अध्याय में, 11वें स्कंद के दूसरे अध्याय में जितने भी बचे हुए श्लोक हैं 8, इन 8 श्लोकों में श्री हवि उत्तम भागवत की ही व्याख्या करने वाले हैं, क्योंकि ये विषय इतना महत्वपूर्ण है। तीनों प्रकार के भागवतों में से जो उत्तम भागवत होते हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हैं।
क्योंकि उत्तम भागवत की कृपा से ही अन्य भागवतों को कृष्ण प्रेम मिल सकता है। तो सर्वप्रथम जब दूसरी बार उत्तम भागवत की व्याख्या करते हैं श्री हवि, तो वो कहते हैं कि यद्यपि वो अपने आंखों से सब कुछ देखते हैं जो कि सृष्टि में है, पदार्थों का प्रयोग भी करते हैं, परंतु ये जान के प्रयोग करते हैं कि ये भगवान की शक्ति है, ये भगवान की संपत्ति है, इसलिए इन सारे वस्तुओं को केवल भगवान की सेवा में प्रयोग करते हैं। वो हर चीज का संबंध भगवान श्री कृष्ण से स्पष्ट रूप से देखते हैं, उनका पृथक भाव नहीं होता कि ये मेरे लिए है, ये भगवान के लिए है, ये मेरे भोग के लिए रखा गया है, नहीं, सब कुछ भगवान का ही है और भगवान के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसे युक्त वैराग्य कहते हैं, इसलिए क्योंकि वो निरासक्त होके इस दुनिया में रहता है, सुख दुख जो साधारण बद्ध जीव को अनुभव करना पड़ता है वो महाभागवत को नहीं अनुभव करना पड़ता। भले जीवन में कष्ट आ जाते हैं परंतु वो कोई भौतिक कारण से नहीं होते हैं, वो भगवान की सेवा से संबंधित हो सकते हैं, परंतु अपने इंद्र तृप्ति में विघ्न आ गए, अहंकार चुभ गया, इसलिए गुस्सा आ गया या दुख हो गया, ऐसे नहीं होता उनको। श्रील प्रभुपाद एक ऐसे उत्तम भागवत हैं, महाभागवत, तो वो कहा करते थे कि हम लोग क्योंकि विश्व भर में कृष्ण भक्ति के प्रचार के कार्य में लगे हुए हैं तो हमको बहुत सारे सरदर्द होते हैं, परंतु जो हिमालय में बैठे योगी जन होते हैं उनको सरदर्द नहीं होते, क्योंकि वो आराम से अपने ही मुक्ति या मोक्ष को प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे होते हैं। परंतु श्रील प्रभुपाद जैसे जो उत्तम भागवत होते हैं वो सब जगह भ्रमण करते हैं सबका उद्धार करने के लिए, कैसे सबको भगवान की भक्ति में लाया जाए, भक्ति में आगे कैसे वो बढ़ते रहें, कैसे महाप्रभु श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री कृष्ण के आंदोलन को आगे बढ़ाया जाए, ये उनका चिंतन का विषय रहता है। तो जो श्रील प्रभुपाद जैसे उत्तम भागवत के जीवनों में सुख दुख आता है वो इस संसार का सुख दुख के समान नहीं होता। तो यहां जिस सुख दुख की बात हो रही है वो भौतिक इंद्र तृप्ति से उत्पन्न होने वाले सुख दुख की बात है। फिर आगे श्री हवि बताते हैं कि ऐसे मिथ्या भावना को त्याग देते हैं वो, और इसलिए दुनिया के उतार चढ़ाव में, दुनिया के सुख दुख में कुछ लेना देना नहीं होता है उनका। भगवान की कथाओं में, भगवान के नामोच्चारण में, भगवान की सेवा में सदैव मग्न होने के कारण वो अंतःकरण में ही अपने एक आनंद का अनुभव करते हैं, और इसलिए बाहर की वस्तुओं में वो आनंद प्रदान करने का प्रयास नहीं करते हैं। और वो इसलिए है, श्री हवि बताते हैं कि ऐसे महाभागवत में श्री कृष्ण के चरण कमलों का पूर्णतया आश्रय स्वीकार कर लिया होता है, और आश्रय स्वीकार करने वाले भक्त को बिल्कुल कोई भय नहीं होता, कोई अन्य कामना नहीं होती, और वास्तव में वो निष्काम होता है। अन्य जितने भी लोग हैं इस भौतिक सृष्टि में, चाहे वो कर्मी हो, ज्ञानी हो, योगी हो, भोगी हो, वो सब सकाम हैं, अर्थात उनको कोई भगवान की सेवा के अतिरिक्त कोई और उद्देश्य पूर्ण करने की इच्छा है। परंतु उत्तम भागवत वो होते हैं जिनका निजी कोई इच्छा नहीं होता, उनकी सारी इच्छाएं केवल भगवान की इच्छाओं से संबंधित होते हैं। तो ऐसे उदाहरण से या ऐसे एक वर्णन से हमें प्रेरणा मिल सकता है, हमें मार्गदर्शन मिल सकता है कि हमें कैसे आगे बढ़ना चाहिए, हमें भी किस तरह का भक्त बनना चाहिए। जब हमारे मन में तरह तरह की अन्य इच्छाएं आती हैं, तो हमें याद करना चाहिए कि नहीं, हमने सुना था कि उत्तम भागवत ऐसे होते हैं जिनकी कोई स्वतंत्र अपने लिए अपनी इच्छाएं नहीं होती हैं। इच्छाएं तो अवश्य होती हैं, अन्यथा वो तो पत्थर बन जाते। इच्छाएं होती हैं परंतु भगवान से संबंधित। उनकी इच्छा क्या होती है कि हे राधा रानी, हे कृष्ण, मैं आपको कैसे प्रसन्न कर सकता हूं, आपकी क्या सेवा हम कर सकते हैं, आपका क्या आदेश है। तो भगवान के आदेशानुसार वो कार्यों को संपन्न करते हैं, तो ये उनकी इच्छाएं होती हैं। इसलिए उस दुनिया में स्वामित्व कभी जमाने का प्रयास नहीं करते हैं। अतः ऐसे उत्तम भागवत सदैव नम्र रहते हैं, लेश मात्र भी उनके चरित्र में, उनके स्वभाव में, उनके व्यवहार में, उनकी वाणी में अहंकार या घमंड नहीं दिखाई पड़ता। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इस दुनिया में घमंड और अहंकार को त्यागना बहुत मुश्किल होता है। यदि कोई व्यक्ति बहुत सुंदर है, बहुत बुद्धिमान है, उसका जन्म ऊंचे कुल में हुआ हो, बहुत शिक्षित व्यक्ति है, बुद्धिमान व्यक्ति है, धनी व्यक्ति है, तो स्वाभाविक है कि उस व्यक्ति के अंदर थोड़ा घमंड हो जाता है कि मैं कोई विशेष आदमी हूं। परंतु ऐसे महाभागवत में तनिक भी ऐसे कोई घमंड नहीं होता। भले उसके पास ये सारे भौतिक योग्यताएं क्यों ना हो, होते हुए भी या न होते हुए भी, ऐसे महाभागवत बिल्कुल नम्र रहते हैं। इसलिए कुंती महारानी कहती हैं, जन्मैश्वर्य श्रुत श्री भी एधमान मदह पुमान नैवाहत्य विधा तुम वही त्वाम अकिंचन गोचरा। कि हे कृष्ण, जिनके पास धन होता है, जिनके पास सौंदर्य होता है, जिन्होंने ऊंची शिक्षा प्राप्त कर ली होती है, या जिन्होंने ऊंचे कुल में जन्म लिया हुआ होता है, उनको आपका एकांतिकी या आपकी एकांतिकी शरण ग्रहण करने में बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि घमंड होता है उनके हृदय में। घमंड होने के कारण वो निस्सहाय भाव से आपको पुकार नहीं सकते हैं, आपका नाम नहीं ले सकते हैं। हिचकिचाहट होती है कि क्या वास्तव में निस्सहाय हूं मैं? मैं भी तो बलवान हूं, मैं भी तो बुद्धिमान हूं, मैं भी तो सक्षम हूं अपने समस्याओं का समाधान करने के लिए। भगवान है ठीक है अपनी जगह में, लेकिन मैं भी तो हूं ना। परंतु महाभागवत जानते हैं, भले ही वो कितने ही योग्य क्यों ना हो भौतिक दृष्टि से, वो जानते हैं कि ये योग्यता भी है वो भगवान ने प्रदान की हुई है, और वो भगवान की सेवा में ही इस्तेमाल किया जाना चाहिए। इसलिए घमंड कभी नहीं करना चाहिए। अंग्रेजी में कहावत है कि यदि मोर से हम मोर पंख लेके अपने आप को सजाएं और फिर सब जगह घूमें कि देखो हम कितने सुंदर दिख रहे हैं, तो ऐसा सौंदर्य किस काम का? सौंदर्य है मोर का ना, आपका तो नहीं है। मोर पंख लगाया हुआ है सुंदर दिखने के लिए, लेकिन वो सौंदर्य तो मोर का है। या किसी से उधार पैसे लेकर, ऋण लेकर हम बताएं कि देखो हमारे पास कितना पैसा है, हम कितने बड़े हैं, अरे लेकिन ऋण का पैसा है, आपका पैसा तो नहीं है। तो ठीक उसी तरह से जो भी हमारे पास है वो सब भगवान की संपत्ति है। तो महाभागवत ऐसे व्यक्ति होते हैं जो न केवल बौद्धिक स्तर पर इस बात को तत्वतः जानते हैं, परंतु हृदय से जानते हैं। वास्तव में श्रद्धा है उनको इस बात पर कि मेरा ये सब नहीं है, ये मेरी बुद्धि नहीं है, कि मेरा धन नहीं है, इसलिए वो नम्र रहता है। और ऐसी नम्रता जो है वो भगवान को आकर्षित करती है। घमंड का हृदय जो है वो भगवान को आकर्षित कभी नहीं करता है। फिर आगे श्री हवि बताते हैं, त्रिभुवन विभव हेतवेपि अकुंठ स्मृतिर अजितात्म सुराद्भिर विमृग्यात। वो कहते हैं त्रिभुवन विभव हेतवे अपि अकुंठ स्मृति। त्रिभुवन ये तीनों लोकों का जो स्वामित्व है, इस सारे ब्रह्मांड के जितना भी ऐश्वर्य है, यदि किसी ऐसे महाभागवत को दिया जाए कि आपको हम ये दुनिया का स्वामित्व दे रहे हैं, आप इस सारे ब्रह्मांड के, दुनिया की बात छोड़िए, सारे ब्रह्मांड के राजा बनेंगे और जितना भी ऐश्वर्य है, भोग है, आपको मिलेगा, लेकिन आपको एक क्षण के लिए भगवान को भूलना होगा। अब बताइए, यदि हमारे पास ऐसे कोई प्रस्ताव आए, फिर बाद में आप भक्ति कर लीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन एक क्षण के लिए भूलना होगा आपको, हम क्या करेंगे? एक ही क्षण तो भूलना है ना, एक क्षण केवल, एक क्षण तो यूं निकल जाएगा, एक क्षण, ऐसे दो शब्द कहने में एक क्षण निकल गया, तो क्या बुरा है उसमें? थोड़ा सा हमने थोड़ी सी विस्मृति हो गई तो कौन सी बड़ी बात है, थोड़ी ऐसे कोई तूफान आंधी होने वाली है एक क्षण के लिए भूल जाए तो। परंतु महाभागवत ऐसे स्वीकार नहीं करते। न चलती भगवत पदारविंदाल लव निमेषार्धम अपि यह स वैष्णवाग्र्यः। वैष्णव अग्र्यः, अग्र्यः अर्थात जो सबसे श्रेष्ठ वैष्णव होते हैं, एक निमिष काल के लिए भी, एक निमिष अर्थात एक क्षण का तीसरा भाग, तिहाई भाग होता है, निमिष की बात दूर है, एक लव के लिए भी, लव उससे भी एक तिहाई छोटा होता है, मतलब एक क्षण को आप छह टुकड़े करिए और उस एक टुकड़े के समय की अवधि के लिए भी ऐसा महाभागवत भगवान को भूलना नहीं चाहता, चाहे आप उसे दुनिया क्यों नहीं प्रदान कर दो। तो ऐसे लक्षण होते हैं महाभागवत के, क्योंकि उनका ऐसे आकर्षण तीव्र होता है भगवान के प्रति कि सारे दुनिया की संपत्ति को, ऐश्वर्य को, भोग को वो तुच्छ समझते हैं। तो ऐसे तुच्छ वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए वो भले सबसे अनमोल रत्न जो भगवान के चरण कमल हैं, एक क्षण के लिए भी क्यों ना हो, क्यों त्यागेंगे? बात है भिन्न भिन्न वस्तुओं के मूल्यों को जानना। यदि हम समझ लेते हैं वास्तव में कि भगवान के चरण कमलों की सेवा का मूल्य कितना है और संसार के वस्तुओं के भोग का मूल्य कितना है, यदि वास्तव में हम ये सब जानते तो हम निश्चित ही कभी संसार में रमण नहीं करते। हम नहीं जानते हैं, यह श्रद्धा कम है, इसलिए संसार में घूमते फिरते रहते हैं। परंतु श्री हवि बताते हैं कि जो शुद्ध भक्त होते हैं, महाभागवत होते हैं, वो ऐसे करते हैं, भगवान की भक्ति किसी भी हालत में छोड़ते नहीं है। कभी कभी भक्तों के बीच में हो सकता है कोई प्रस्ताव आ जाए, अभी हम भक्ति तो कर ही रहे हैं ना, अभी देखो हमने 16 माले भी करना शुरू किया प्रतिदिन, और हर रविवार को आते हैं, कीर्तन प्रवचन में शामिल होते हैं, तो एक बार सिनेमा देखने गए तो क्या बुरा कर दिया हमने? एक ही बार तो जा गए ना, बस एक आध बार कभी जाते हैं तो कौन सी ऐसी बड़ा पाप हमने कर लिया? एक बार जब हम चार नियमों की बात कर रहे थे कि देखो सभ्य जीवन के लिए, निष्पाप जीवन के लिए इन चार नियमों का पालन करना चाहिए, मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, व्यभिचार नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, तो फिर एक व्यक्ति कहने लगा शराब नहीं पीना ठीक है, लेकिन एकाध बार अभी पी लिया तो क्या खराब है उसमें, हम थोड़ी बहुत ज्यादा नहीं पी, थोड़ा ही पीते हैं। तो हम कहेंगे कि देखिए बहुत ज्यादा विष पीने से आदमी तो मर ही जाएगा, यदि मैं आपको कहूं थोड़ा थोड़ा विष पी लीजिए ना, मरेंगे नहीं ना, तो थोड़ा विष है तो क्या खराबी है, कोई आदमी लेगा ऐसे विष? नहीं बाबा, हम विष नहीं लेंगे, दूर ही रहेंगे। तो आध्यात्मिक दृष्टि से ये सब चीजें विष ही है, तो ऐसे विष से हमें दूर ही रहना है, क्योंकि हमें अपनी भक्ति को बचाए रखना है। विष्णु पुराण में एक श्लोक है, सहानिस्तन महाछिद्रम स मोह सच विभ्रम यन मुहूर्तम क्षण वापि वासुदेवम न चिंतयेत। ऐसे जो उत्तम भागवत या महाभागवत होते हैं वो सोचते हैं, यन मुहूर्तम क्षण वापि वासुदेवम न चिंतयेत। वासुदेव या श्री कृष्ण का स्मरण यदि एक क्षण के लिए भी उन्होंने खो दिया या नहीं किया, तो इस बात को वो क्या समझते हैं, सबसे बड़ी हानि अपने जीवन में, सबसे बड़ा नुकसान, सबसे बड़ा मोह, सबसे बड़ी दुर्घटना अपने जीवन में। हम किस चीज को दुर्घटना समझते हैं, जब हमारे जीवन में कोई आर्थिक नुकसान हो जाता है, हमारे पैसे चोरी हो गए, या हमने पैसे कहीं किसी के पास रखे थे और वो गायब हो गया, या हमने बैंक में रखा था बैंक डूब गया, या हमने किसी को उधार दिया था वो आदमी रहा नहीं, या हमारे व्यवसाय में पैसों के नुकसान हो गए, या समझ लीजिए कि हमारे शरीर में कोई ऐसे अपघात के कारण कोई हानि पहुंच गई, तो इन चीजों को हम दुर्घटना समझते हैं। परंतु वास्तविक दुर्घटना क्या है, ये शरीर का नाश तो होना ही होना है, पैसों का नाश तो होना ही होना है, आज नहीं तो कल। तो इन चीजों के प्रति इतना आसक्त हो कि अपने मन को कष्ट क्यों देना चाहिए। वास्तविक जो मूल्यवान चीजें हैं वो है भगवान की भक्ति और उनसे संबंधित जो भी चीजें हैं। तो जो महाभागवत होते हैं जिनका उल्लेख या वर्णन यहां पाया जाता है, तो वो ऐसे सोचते हैं कि एक क्षण के लिए भी मुझे भगवान के चरणों को भूलना नहीं है। अकुंठ स्मृति, एक क्षण के लिए भी वो भगवान को भूलना नहीं चाहता है। तो ऐसे सारे गुण हैं, भले हमें लगे कि ये बहुत ऊंची बात है हमारे लिए, तो हमारे बस की बात नहीं है, परंतु देखिए हम जीवन में क्या आदर्श रखते हैं, ये बहुत महत्व की बात होती है। आप किसी व्यक्ति का जीवन में स्थान कैसे समझ सकते हैं, उनको पूछिए आपके जीवन में आदर्श क्या है, आप क्या बनना चाहते हैं, क्या होना चाहते हैं, आपके जीवन में मूल्यवान वस्तुएं क्या हैं, तब आप जानेंगे कि वो किस तरह का आदमी है। आप पूछेंगे किसी को कि आप क्या बनना चाहते हो, वो कहेगा मैं बहुत बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, करोड़पति अरबपति बनना चाहता हूँ, मैं बहुत भोग करना चाहता हूँ, मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। तो आप समझ सकते हैं कि उसका स्तर क्या है आध्यात्मिक दृष्टि से। परंतु यदि कोई व्यक्ति कहे नहीं, मैं भगवान का शुद्ध भक्त बनना चाहता हूं, देखिए ये एक अच्छा आदमी है। परंतु ऐसे भी कोई कहे, हाँ भक्ति बुरी चीज नहीं है, परंतु भोग भी बुरी चीज नहीं है, मैं थोड़ा भोग भी करूंगा, भक्ति भी करूंगा, भोग और भक्ति साथ साथ करूंगा, तो उसका भी स्तर बीच का है। परंतु सबसे ऊंचा स्तर किसका है, जो सोचेगा कि मुझे भक्ति और केवल भक्ति चाहिए, तो उसका आदर्श क्या होगा, ऐसे शुद्ध भक्त उनके आदर्श होंगे कि हम ऐसे बनना चाहते हैं, भले आज हम नहीं हैं, भले हमें इस स्तर को पहुंचने के लिए बहुत समय भी लग जाए, इस जन्म में न भी हो पाए कोई बात नहीं, परंतु हम ऐसे भक्त बनना चाहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है, ऐसे उद्देश्य, ऐसे आदर्श हमारे जीवन में बनाए रखने चाहिए। इसलिए तो भगवान ने ऐसे श्रीमद् भागवत जैसे ग्रंथ प्रदान किए हैं मनुष्य समाज को, ताकि हम जानें कि क्या उद्देश्य हमारे जीवन में रखें और कैसे इस उद्देश्य की प्राप्ति हम करें। ध्रुव महाराज की कथा तो आप सब जानते हैं, राजकुमार थे, 5 साल की आयु थी, जबकि अपमानित होने के कारण, क्षत्रिय स्वभाव होने के कारण उन्होंने सोचा कि मैं ये अपमान सहन नहीं कर सकता, तो मैं भगवान की उपासना करूंगा और ऐसे एक पद प्राप्त करूंगा जो मेरे पिता के पद से भी ऊंचा है। पिता की बात दूर है, मेरे दादा पर दादा के पद से भी ऊंचा है। ध्रुव महाराज के पिता थे महाराज उत्तानपाद, उत्तानपाद के पिता थे स्वयंभुव मनु, और मनु के पिता थे ब्रह्मा जी सृष्टि करता। तो ध्रुव महाराज ने सोचा मेरे पिता उत्तानपाद की बात दूर है, स्वयंभुव मनु की बात तो दूर है, मैं ब्रह्मा जी से भी ऊंचा पद प्राप्त करना चाहता हूं, तब जाकर मेरा अपमान जो है मैं मिटा दूंगा। कभी कभी ऐसे होता है ना, जब हम अपमानित हो जाते हैं हम सोचते मैं सबक सिखाऊंगा उनको, मैं ऐसे कर दिखाऊंगा कि देखो सब मेरी वाह वाह करने लगेंगे। तो ध्रुव महाराज 5 साल का बच्चा था उस समय, फिर भी उसके मन में क्षत्रिय खून होने के कारण वो ऐसे सोच रहा था, और इतनी दृढ़ता उस बच्चे में थी जैसे साधारण बच्चे इधर उधर नटखट होते हैं, चंचल होते हैं, इधर उधर खेलते रहते हैं, चिल्लाते रहते हैं। लेकिन ध्रुव महाराज ने सोचा नहीं, मुझे जंगल में जाना चाहिए भगवान को पाने के लिए। अपनी माँ से जब पूछा था तो माँ ने कहा बेटा मैं भी कुछ नहीं कर सकते, भगवान ही कर सकते हैं। तो फिर ध्रुव ने पूछा कि भगवान कहाँ मिलेंगे, तो माता ने कहा कि मैंने सुना है कि बड़े बड़े ऋषि मुनि जो हैं वो जंगल में जाया करते हैं भगवान को पाने के लिए, जंगल में जाके बहुत तपस्या करते हैं। तो ध्रुव ने सोचा मैं भी जंगल में जाऊंगा, तो जंगल में चले गए और 6 महीने ऐसी कड़ी तपस्या की कि जिसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते। उनको क्या चाहिए था, राज्य, ब्रह्मा जैसे भी बड़ा राज्य। और ऐसी तपस्या की ध्रुव महाराज ने कि भगवान भी चकाचौंध हो गए, और भगवान स्वयं आए इस बच्चे के सामने कि ध्रुव मैं अब तुम्हारी तपस्या से बहुत प्रसन्न हो चुका हो गया हूं, तो बताओ तुम्हें क्या चाहिए। जब भगवान प्रकट हुए बालक ध्रुव के सामने, भगवान ने उनको दर्शन दिया, ध्रुव महाराज की आंखें खुली, अपने सामने भगवान को देखा तो बस भाव विभोर हो गए, प्रेमावेश में उनकी आंखों से आंसू बहने लगे, रोंगटे खड़े हो गए, कंठ से कुछ स्वर नहीं निकल रहा था। तो भगवान ने बड़े दया करके अपने शंख का स्पर्श ध्रुव महाराज के सर पे किया, और फिर ध्रुव महाराज के मुख से सुंदर स्तुतियां भगवान की निकलने लगीं, एक के बाद एक भगवान का गुणगान करने लगे वो। और उनमें से एक श्लोक उन्होंने जो कहा, जो हरि भक्ति सुधोदय नाम के ग्रंथ में है, स्थानाभिलाषी तपसि स्थितोऽहम् त्वां प्राप्तवान देव मुनीन्द्र गुह्यम् काचम विचिन्वन्नपि दिव्य रत्नम् स्वामिन् कृतार्थोऽस्मि वरम् न याचे। ध्रुव महाराज ने कहा कि हे प्रभु आप मेरे सामने अब प्रकट हो गए हैं, मैं स्थान की अभिलाषा कर रहा था, बहुत ऊंचे स्थान की, और ऐसे ऊंचा स्थान जो कि मेरे परदादा ब्रह्मा जी के स्थान से भी ऊपर है, और इसके लिए मैंने अपने आप को तपस्या में स्थित कर दिया था। स्थानाभिलाषी तपसि स्थितोऽहम्। और ऐसी तपस्या करने के बाद अब आप भगवान मुझे प्राप्त हो चुके हो, त्वां प्राप्तवान, और आप तो बड़े बड़े देवतागण और ऋषि मुनियों को भी आसानी से प्राप्त नहीं होते हो, परंतु मुझे प्राप्त हो गए हो। अब जब आप प्राप्त हो गए हो मुझे, मेरे हृदय में आपके प्रति जब प्रेम उत्पन्न हो गया है, अब मुझे ऐसे लगता है कि वो जो ऊंचा स्थान है जिसकी प्राप्ति के लिए मैं आपके पास आया था और मैंने इतनी कड़ी तपस्या की, वो टूटे हुए कांचों के, वो नीचे सड़क पे गिरे हुए कांचों के, कांच के टुकड़ों के बराबर है, जबकि आपका दर्शन और आपका प्रेम ये एक अनमोल दिव्य रत्न के बराबर है। काचम विचिन्मन अपि दिव्य रत्नम। तो मुझे अब ये दिव्य रत्न प्राप्त हो चुका है, तो ये टूटे हुए जो कांच है इसके पीछे मैं क्यों जाऊं। स्वामिन कृतार्थ है, अब हे स्वामी मैं कृतार्थ हो चुका हूं, मैं संतुष्ट हूं। वरम न याचे, अब मुझे कोई वरदान नहीं चाहिए, मैं संतुष्ट हूं। आपका दर्शन हुआ, बस मेरे लिए बहुत है। देखिए ऐसे लक्षण ध्रुव महाराज का परिवर्तन कैसे हुआ। पहले तो वो कनिष्ठ स्तर में थे, क्योंकि भगवान के पास गए तो कुछ मांगने गए थे, भगवान से व्यापार करने गए थे कि मैं ऐसी तपस्या करूंगा आपके लिए, परंतु आपको मुझे बदले में यह देना होगा। परंतु जब भगवान की भक्ति प्राप्त हो गई तो ये सारी चीजें भूल गए ध्रुव महाराज, और केवल भगवान की भक्ति के बारे में ही सोचने लगे। आगे श्री हवि बताते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के चरण कमल ये बहुत शक्तिशाली होते हैं, बहुत कृपालु होते हैं, और भक्तों के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। भगवान के भक्त श्री कृष्ण के चरण कमलों में सदैव स्थित रहना चाहते हैं, एक धूलि के कण के बराबर, क्योंकि वो चरण कमलों का महत्व जानते हैं। भगवान के चरण कमलों के दर्शन के लिए बड़े बड़े देवतागण ऋषि मुनिगण लालायित रहते हैं, परंतु वो दर्शन नहीं कर पाते हैं। परंतु शुद्ध भक्त जो होते हैं वो इन चरण कमलों का सदैव दर्शन करते हैं। यहां श्री हवि कहते हैं कि भगवान के चरण कमलों के नखमंडल का तेज ये शीतल चांद के किरणों के समान है। दिन भर जब सूर्य की किरणें पृथ्वी को तपित कर देते हैं, गर्म कर देते हैं, और फिर शाम का समय आ जाता है, सूर्यास्त हो जाता है और चांद का उदय होता है, तो चांद की शीतल किरणों के कारण जो दिन की गर्मी है वो मिट जाती है और एक ठंडक सी आ जाती है, जिससे सारे प्राणियों को राहत मिलती है दिन की गर्मी से। तो ठीक उसी प्रकार से ये संसार कष्टों से भरा हुआ है, कौन है जो इस सत्य को इनकार कर सकता है। संसार दावा नल लीरह लोका, एक दावा नल जैसे है जिसमें सब जगह कष्ट ही कष्ट है। एक कष्ट समाप्त हुआ तो दूसरे द्वार पे खड़ा है, कभी दो तीन द्वार के अंदर एक साथ भी आ जाते हैं, कई बार जैसे कहते हैं चप्पर फाड़ के भी आ जाते हैं। तो संसार है, ऐसे होना ही है। तो जो शोकग्रस्त व्यक्ति है, जो संसार के दावानल से तपा हुआ, तला हुआ उबला हुआ व्यक्ति है, और कौन नहीं है, उसको चाहिए कि वो ऐसे तेज अग्नि के किरणों से बचना चाहे, तो भगवान के चरण कमलों के नखमंडल के तेज के शीतल किरणों में आए, फिर उसके हृदय के सारे जो कष्ट है वो सब मिट जाएंगे, एकदम से चले जाएंगे। इसलिए भगवान की भक्ति करने से ये लाभ होता है। तो ऐसे महाभागवत जो होते हैं वो सदैव भगवान के चरण कमलों में स्थित रहते हैं अपने आप को, इसलिए उनके जीवन में, उनके हृदय में कोई ऐसे कष्ट नहीं होता, अपने लिए कोई कष्ट नहीं होता है। प्रहलाद महाराज कहते हैं ना, नैवोद विजय पर दुरत्य वैतरण्यस्तवीर गायन महामृत मग्न चित्त शोचे ततो विमुख चेतस इंद्रियार्थ भारम उद्वहतो विमूढ़ान। प्रहलाद जी कहते हैं कि हे प्रभु नरसिंहदेव भगवान, ये संसार तो बहुत दुखों का संसार है, दुखों का सागर है ये, परंतु मैं पीड़ित में नहीं हूं, मेरे लिए कोई पीड़ा कोई दुख नहीं है, न उद्विजे पर दुरत्यय वैतरण्यास। बड़ा दुरत्यय, बड़ा ये कठिन है ये दुनिया, ये संसार, फिर भी ये दुनिया का कष्ट मुझे स्पर्श नहीं कर सकता। क्यों? त्वद वीर गायन महामृत मग्न चित्त है। क्योंकि मेरा चित्त जो है वो आपके गुणगान करने में इतना मग्न है, और इस गुणगान से जो अमृत का पान होता है, उसका स्वाद करने से जो आनंद मिलता है, वो एक कवच बन जाता है, जिस कवच के कारण दुनिया के जितने भी कष्ट क्यों ना आए, वो हमें स्पर्श नहीं कर सकते। तो जो भी व्यक्ति दुनिया में कष्टों से बचना चाहता है, उसे इस कवच को पहन लेना चाहिए। और कौन कह सकता है कि मैं कष्टों से बचना नहीं चाहता? तो हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने जीवन में भगवान श्री कृष्ण की कथा और नाम सुनने में और बोलने में समय ज्यादा बिताना चाहिए। इसलिए आगे श्री हवि बताते हैं, जो महाभागवत के कार्यों का या स्वभाव का सार है, वो कहते हैं कि भगवान इतने दयालु हैं कि जाने में, जाने अनजाने में, अनायास भी कोई बद्ध जीव उनके नामों का उच्चारण करता है तो उनके हृदय में, अर्थात उस उन व्यक्तियों के हृदय में जितने भी ढेर सारे पहाड़ जैसे कठोर पाप भरे हुए हों, वो सब नष्ट हो जाएंगे। केवल भगवान का नाम उच्चारण करने से, और वो भी अनजाने में। तो यदि जानबूझकर प्रेम से, श्रद्धा से कोई व्यक्ति भगवान का नाम ले तो कितना लाभ होगा, कल्पना कीजिए। तो इसलिए ऐसे जो महाभागवत होते हैं जिन्होंने कि भगवान के चरण कमलों का पूर्णतया आश्रय स्वीकार कर लिया होता है, वो सदैव श्री कृष्ण के पवित्र नामों का उच्चारण प्रेम से करता है, सच्चे दिल से करता है, और इस भाव से करता है, इस तरह नामोच्चारण उसका होता है कि भगवान उसके वशीभूत हो जाते हैं, उस भक्त के अधीन हो जाते हैं, उस भक्त के द्वारा नियंत्रित हो जाते हैं। कितने आश्चर्य की बात है ये। तो श्री हवि बताते हैं कि जिस व्यक्ति ने भगवान को अपने हृदय में पकड़ के रखा हो, उनको बंदी बना लिया हो अपने हृदय में, जैसे कि एक कैदी को कारागार में, जेल में बंद किया जाता है, वैसे जिस व्यक्ति ने भगवान को अपने हृदय में बांध के रखा हो, वो भागवत प्रधान है या उत्तम भागवत है। क्योंकि वो भगवान के नाम का प्रेम से उच्चारण करता है, भगवान की कथा प्रेम से सुनता है, बोलता है, स्मरण करता है भगवान का। तो इस कलयुग में विशेष रूप से भगवान का नाम लेना ये बहुत आवश्यक है। श्रीमद् भागवत में कहा गया है, एतान् निर्विद्यमानानाम् इच्छताम कुतो भयम् योगिनाम् निपनिर्णीतम् हरेर नामानुकीर्तनम्। चाहे व्यक्ति किसी भी प्रकार का क्यों न हो, इच्छताम, उसके मन में दुनिया भर की इच्छाएं हैं, वासनाएं हैं। चाहे कोई व्यक्ति ऐसा हो जो आध्यात्मिक पथ में परिपूर्णता प्राप्त कर चुका है, या कोई आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर रहा है अभी भी, हर एक व्यक्ति को चाहिए कि वो भगवान के नामों का कीर्तन करे। हरे नामानुकीर्तनम, अनुकीर्तनम का मतलब है कि बार बार कीर्तन करना, सतत कीर्तन करते रहना। ऐसे नहीं कि हफ्ते में एक बार रविवार के दिन मंदिर में आके केवल कीर्तन करना, प्रतिदिन करना, बार बार करना, इसको अनुकीर्तनम कहते हैं। अनु शब्द का तात्पर्य यहां इस संदर्भ में है, बार बार करना, सतत करना, और भक्तों के पद चिन्हों में चल के पीछे पीछे करना, अर्थात जैसे अन्य भक्त करते हैं वैसे करना, जैसे महान भक्तों ने किया है, अपने मनमाने ढंग से नहीं, अधिकृत ढंग से। तो ऐसे करने से सारी जो आध्यात्मिक परिपूर्णता है वो प्राप्त हो जाएगी। श्रीमद् भागवत का जो सबसे अंतिम श्लोक है वो भी यही है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनस तन्नमामि हरिं परम। सबसे अंतिम श्लोक भागवत का है ये, जिसमें बताया गया है नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। भगवान श्री कृष्ण के नामों का संकीर्तन करने से सारे पाप जो हृदय में भरे हुए हैं वो नष्ट हो जाते हैं, साथ साथ में प्रणामी दुख शमनस, जिनके सामने प्रणाम करने से सारे जीवन के दुख समाप्त हो जाते हैं। तम नमामि हरिं परम, तो ऐसे श्री हरि, ऐसे श्री कृष्ण या गोविंद के चरणों में मैं नमन करता हूं, जिनको प्रणाम करने से दुखों से मुक्त हो जाते हैं, जिनका नामोच्चारण करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए नाम संकीर्तन जो कि इस कलयुग का धर्म है, इसको हमें बड़े तीव्रता से हृदय से स्वीकार करना चाहिए। तो जब इस तरह का संदेश हमें मिलता है तो हमें समझ लेना चाहिए कि भगवान कितने कृपालु हैं, कितना आसान उन्होंने ये रास्ता बना लिया है। भगवान का नाम लेने से ही सब कुछ हो जाता है, ये सबसे बड़ा उपचार है, सबसे बड़ी औषधि है। अभी आपको पता है कि दुनिया में तरह तरह के उपचार की पद्धतियां होती हैं ना, जैसे अंग्रेजी में कहते हैं एलोपैथी, मतलब अंग्रेजी दवाइयां। अंग्रेजी दवाइयों को स्वीकार करने की पद्धति है ये एलोपैथी, फिर है होम्योपैथी, फिर है नेचुरोपैथी, है ना, ऐसे पैथी पैथी मतलब पद्धति। तो तरह तरह की पैथी हैं पथ उपचार करने के लिए, परंतु सबसे महत्वपूर्ण पथ कौन सा है, जपोपैथी, चैंटोपैथी, चैंट हरे कृष्ण जप करना, कीर्तनोपैथी, प्रसादोपैथी, निद्रोपैथी नहीं, सिनेमापैथी नहीं, टीवीपैथी नहीं, जपोपैथी, कीर्तनोपैथी, बस यही करें अपने जीवन का, अपना जीवन धन्य हो जाएगा। सबसे बड़ा, सबसे बड़ी औषधि यही है। परीक्षित महाराज भी ऐसे ही कहते हैं श्रीमद् भागवत में, निवृत्त तर्षय रूपगीयमानात भवौषधात् श्रोत्र मनोभिरामात् क उत्तम श्लोक गुणानुवादात् पुमान विरज्येत बिना पशुपनात्। वो कहते हैं सुखदेव गोस्वामी से कि भगवान के गुणगान का जो मार्ग है वो ऐसे लोग दृढ़ता से स्वीकार कर सकते हैं जिन्होंने कि संसार को भोग करने की जो कामनाएं हैं उनको त्याग कर दिया है, जिनका पेट भरा हुआ है, जिनकी तृष्णा या प्यास संसार को भोगने की वो मिट चुकी है और वो संसार से ऊब गए हैं। अब उनको संसार के भोग से, ये चमक धमक से, ये धन दौलत से सब अब कुछ नहीं लेना है, देना है। निवृत्त तरशेर, तरशेर मतलब तृष्णा, निवृत्त मतलब जो मिट गया है। उपगीय माना, जो ऐसे भगवान का गायन करना गुणों का, ये जो मार्ग है केवल ऐसे लोग कर सकते हैं। और ऐसे पथ पे चलने से क्या होगा, भव औषधा तत् मनोभिरामात्। ये भव रोग से, सबसे भयंकर रोग है ये, भव रोग से मुक्त होने के लिए सबसे अच्छी औषधि है मन अभिरामात्, मन को बड़ा प्रसन्न करता है। कई ऐसी दवाइयां हैं जो बड़ी कड़वी होती हैं, खट्टी होती हैं, इसलिए वैद्य क्या करते हैं, गुड़ शक्कर आदि मिला के देते हैं, नहीं तो क्या है वो मरीज दवाई लेगा ही नहीं, वो सोचेगा कि भाई बीमारी सही, बीमारी से ज्यादा कष्ट ये दवाई हमको दे रही है, खट्टा और कड़वा वगैरह वगैरह, इसलिए डॉक्टर कभी कभी कुछ मीठा कुछ मिलाकर उसको दे देते हैं। परंतु ये जो हरि नाम की औषधि है इसमें कुछ मीठी चीज मिलाने की आवश्यकता नहीं, अपने आप में इतनी मीठी है कि जो व्यक्ति इस औषधि को स्वीकार करता है तो उसका भी जीवन मधुर और मीठा बन जाता है। यहां बेलगाम में कहते हैं कि तिल गुड़ खाइए और अच्छी गुड़ मधुर बातें बोली, मीठी बातें बोलिए, है ना। तो हमें कहना चाहिए हरि नाम लीजिए और फिर ऐसे मीठे हरि नाम को दोहराते रहिए, फिर कृष्ण कथा बोलिए। भगवान का नाम का सतत उच्चारण करने से हमारा जीवन भी माधुरी से भर जाएगा, सारे जीवन का कष्ट वो मिट जाएगा। इसलिए चाहिए सुबह शाम हम भगवान का नाम लें। हर एक घर में प्रभुपाद जी कहते हैं कि संकीर्तन होना चाहिए, प्रतिदिन होना चाहिए, और जब नहीं होगा इसका मतलब है कि वो मंदिर में आके कर रहे हैं। इसलिए सुबह शाम होना चाहिए और सारे परिवार के सदस्यों को इकट्ठे होकर कीर्तन करना चाहिए, फिर प्रभुपाद जी के ग्रंथों से कुछ पढ़ना चाहिए, कुछ सुनना चाहिए, भले दो बार ना हो सके तो एक बार तो कम से कम होना तो होना ही चाहिए। तो ऐसे शुद्ध भक्त का वर्णन करते हैं श्री हवि। तो इन 8 श्लोकों में वैसे बहुत कुछ, विषय तो बहुत लंबा है, क्योंकि भागवत प्रधान का लक्षण होता है कि वो भगवान को अपने हृदय में बांध के रखता है। यही एक विषय इतना लंबा है कि इसके बारे में बहुत चर्चा हो सकती है, परंतु हमें महाराज निमि के अन्य प्रश्नों को भी सुनना है और उनके उत्तर कौन से हैं वो भी तो हमें सुनने हैं। इसलिए इस समय इस विषय को हम विराम देते हैं। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर नव योगेंद्र ने दे दिया, अब तीसरा प्रश्न पूछने वाले हैं महाराज निमि। यदि आप जानना चाहते हैं कि कौन सा था वो प्रश्न, तीसरा प्रश्न महाराज निमि का, और क्या उत्तर मिला, तो आपको अगले रविवार इसी समय इसी स्थान में यहां आना होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न है आपके? जो श्लोक लगाया है वहां तक पहुंच नहीं सके हम, कोई बात नहीं, अगले रविवार को करेंगे। हाँ बोलिए। हाँ हाँ बोला बोला। हाँ हाँ घेना हाँ। देखिए ऐसा है, बैठे बैठे आप हरिनाम लेने से कोई किसी को रोक नहीं सकता। यदि जोर से हमारा हरिनाम करने से अन्यों को कोई कठिनाई हो रही है तो हम हल्के से करें, हल्के से करने से हरिनाम तो ले ही रहे हैं, हरिनाम लेने में कोई रोक नहीं सकता। और हल्के करने में भी कोई समस्या, कई बार घरों में ऐसे होता है लोग बाधा डालते हैं कि नहीं जप नहीं करना चाहिए, कीर्तन की बात तो दूर है, जप भी नहीं करना चाहिए, तो ठीक है मन ही मन में कर लो। तो इसलिए हरि नाम लेने में कोई किसी को रोकता नहीं, ना भक्त तो कम से कम रोकते नहीं है। केवल ऐसा है कि थोड़ा हमें ऐसे सोचना चाहिए कि हम जब कीर्तन करते हैं तो अन्य लोग भी अपने जीवन में विचलित ना हो जाएं। जैसे कभी कभी जप आदि करते हैं ना, भक्त लोग इकट्ठे बैठ के जप करते हैं, तो कई भक्त इतने जोर से जप करते हैं, दूसरे भक्त पर शिकायत करते हैं, अरे आप इतने जोर से जप मत कीजिए, हमें अपना ही जप सुनाई नहीं दे रहा है। तो जब साथ में बैठते हैं तो हमें थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हाँ ठीक है, और कोई प्रश्न है यहाँ? एक मिनट, हाँ दूसरे प्रश्न, हाँ प्रश्न है, हाँ
तो जो साक्षात्कार है, जो भक्तों से सुनते हैं या ग्रंथ पढ़ते हैं, तो उस समय वो साक्षात्कार ऐसे मालूम होता है कि हमारे हृदय में भी हुए हैं और कुछ समय के लिए रहते भी हैं, लेकिन वो उस समय के बाद निकल भी जाते हैं, तो इसका क्या कारण है कि जब सुनते हैं और या फिर ग्रंथ पढ़ते हैं तो उस समय वो बहुत दृढ़ता से रहते हैं हृदय में, लेकिन कुछ समय के बाद निकल जाते हैं?
प्रश्न ये है कि हम जब सुनते हैं तो थोड़े मन में बात, थोड़ी देर के लिए बात बैठ जाती है, लेकिन फिर थोड़ी देर से बात वो निकल जाती है, और पहले हम जैसे सोचते थे फिर सोचने लगते हैं। क्योंकि अभी तक बीमारी पूरी तरह से ठीक हुई नहीं है। जब हम बीमार होते हैं तो औषध लेते हैं, और उस औषध को या दवाई को लेते समय ऐसा नहीं कि बस एक गोली ले ली या एक बार औषध ले लिया और हम ठीक हो गए, नहीं। यदि हम एक ही गोली लेंगे, जबकि वैद्य ने बताया कि आपको एक हफ्ते लेने चाहिए गोली दिन में 3 बार, और हम एक ही गोली लेते हैं और सोचते कि ठीक होना चाहिए, नहीं होगा। क्योंकि उतना हमारी बीमारी बढ़ गई है कि वो एक गोली हमारे लिए ठीक नहीं है, पर्याप्त नहीं है, तो हमें दिन में 3 बार लेने चाहिए, कम से कम एक हफ्ते के लिए करना चाहिए। तो ठीक उसी तरह से हमारी बीमारी, आध्यात्मिक बीमारी, इतनी जन्मों से चलती आई है, लाखों लाखों जन्मों से, इसलिए इतनी गहराई से और सख्ती से वो माया हमारे हृदय में बैठी हुई है कि उसको निकालना या उसके प्रभाव को मिटाना आसान नहीं है। इसलिए बहुत ज्यादा ये दवाई लेनी चाहिए, प्रतिदिन लेनी चाहिए। दूसरे शब्दों में हमें कृष्ण कथा, कृष्ण नाम प्रतिदिन बार बार सुनना चाहिए। इसलिए देखिए, यदि कोई एक प्रश्न कहे कि हम भक्ति में कैसे प्रगति करें, आप देखेंगे जो व्यक्ति अधिक श्रवण करते हैं वो जल्दी प्रगति करते हैं, जो श्रवण नहीं करेंगे भक्तों के संग में आकर उनकी प्रगति उतनी तेज नहीं होगी। क्योंकि संसार की माया शक्ति इतनी प्रबल है कि एक बार सुनने पर भी वो माया फिर से हैरान करती है। इसलिए हमें चाहिए कि बार बार हम श्रवण कीर्तन करते रहें। जब श्रवण करेंगे तब कीर्तन भी करेंगे, और श्रवण कीर्तन करके फिर स्मरण होगा। इसलिए बार बार ये श्रवण करना बहुत जरूरी है। प्रभुपाद जी ने कहा कि मैंने ये अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बनाया है लोगों को श्रवण करने का अवसर प्रदान करने के लिए, क्योंकि बाहर दुनिया में ऐसे विषय सुनने में नहीं आते। आप कहीं भी जाएं, बाजार में जाएं, सड़क में जाएं, दूसरों के घरों में जाएं, तो दुनिया की बातें चलती हैं, भगवान की बातें नहीं चलती हैं। इसलिए ऐसे मंदिरों में आके जहां सत्संग होते हैं, जहां कृष्ण कथा होती है, कृष्ण नाम होता है, बार बार ऐसे करने से फिर वो निष्ठा बढ़ती है, फिर उसका प्रभाव बढ़ जाता है, और फिर हम ऐसे तंदुरुस्त हो जाते हैं आध्यात्मिक दृष्टि से कि फिर वो माया हमें इतनी परेशान नहीं करती है। तो उत्तर ये है, बार बार प्रतिदिन श्रवण करना चाहिए। जितना हम श्रवण करेंगे उतना हमारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, और कोई प्रश्न है? हाँ एक मिनट बस। दूसरों को भी चांस देते हैं। हाँ, और कोई है प्रश्न? कहाँ से? अच्छा ठीक, आकाशवाणी आइए।
प्रश्न है, श्रीमती राधाष्टमी के दिन का उधर प्रश्न आंसर नहीं हुए थे, तो आपने बोला था कि जो भी करना है वो आचार्यों के और शुद्ध भक्तों की पदचिन्हों के ऊपर करना चाहिए, लेकिन शास्त्र में पढ़े तो पता चलता है कि तभी टीवी नहीं थे, तो वो आचार्य लोग यात्रा पे जाते थे, वो ट्रेन नहीं थी, चलते जाते थे, लेकिन अभी इस भक्ति जगत में हम अभी इसके सुधार के साथ जाना चाहिए, तो कैसे करना चाहिए?
समझा नहीं। अच्छा अच्छा, तो जब पूर्व काल में ऐसे बताया जाता है कि आचार्यों के पदचिन्हों में चलना चाहिए, अब पहले आचार्य तीर्थ यात्रा में जाते थे, रेलगाड़ी में तो नहीं जाते थे, वो तो चल के जाते थे, तो हम लोग यदि रेलगाड़ी में वृंदावन जाएं तो क्या ठीक है या नहीं, ऐसे ही प्रश्न है ना? दो चीजें हैं, सिद्धांत और विस्तार। सिद्धांत क्या है? भगवान के धाम में जाना, भक्तों का संग करना, हरि नाम लेना, प्रसाद ग्रहण करना इत्यादि। और विस्तार क्या है कि धाम जाते समय आप कैसे जाएंगे, प्रसाद लेते समय आप दक्षिण भारत का प्रसाद लेंगे, उत्तर भारत का लेंगे, पंजाबी लेंगे, बंगाली भोजन लेंगे, महाराष्ट्रीयन लेंगे, गुजराती भोजन लेंगे, कैसे भोजन लेंगे, ये विस्तार है। जैसे प्रथा जहां है वो वैसे प्रसाद भोजन बनाएंगे, भगवान को अर्पण करेंगे, प्रसाद बन जाएगा, ले लेंगे, ये एक विस्तार है। इसी प्रकार से पहले ये सब नहीं हुआ करता था, तो लोगों को पैदल ही जाना पड़ता था। आज के जमाने में यदि हम द्वारका वृंदावन चल के जाएं तो जीवन ही निकल जाएगा उसी में। तो हमारे आधुनिक काल के जो साधु हैं हमारे लिए प्रभुपाद जी हैं। प्रभुपाद जी तो 14 बार दुनिया का भ्रमण कर चुके, पैदल नहीं, हवाई जहाज में गए, और कभी कभी ट्रेन में भी गए, रेलगाड़ी में। तो इस तरह से रेलगाड़ी में भी जाना ये कोई गलत बात नहीं है, परंतु मूल बात यह है कि तपस्या होनी चाहिए। जब हम किसी तीर्थ स्थान में जाते हैं, धाम में जाते हैं, तो थोड़ी बहुत तपस्या करनी चाहिए, बहुत आराम भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, थोड़ी सुविधाएं ठीक है, अच्छी बात है, परंतु बहुत ज्यादा सुविधा, बहुत ज्यादा आराम, वो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, श्रील प्रभुपाद की जय।